رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعه يظلهم الله في ظله وما لا ظل الا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطبے کے اندر جو حدیث شریف پڑھی گئی اس میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سات لوگوں کے بارے میں بشارت دی ہے، اللہ پاک ان کو قیامت کے روز جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ پاک ان سات لوگوں کو سائے کی نعمت سے سرفراز فرمائیں گے، سائے کی نعمت اور دولت اور براحت اور آسانی ان کو اس دن مرحمت فرمائیں گے۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا، ہر اعتبار سے ہولناک ہوگا، انسانوں کو اپنے انجام کی پڑی ہوگی، اور ظاہری اعتبار سے بھی گرمی کے جو سامان ہوں گے وہ سوا نیزے پر سورج ہمارے ہوگا، انسان پسینوں میں ہر آدمی ڈوبا ہوا ہوگا، جس قدر بھی انسان کے گناہ اور بدعملیاں ہوں گے اسی قدر وہ پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں، کوئی کمر تک پسینے میں، کوئی کاندھوں تک، اور کوئی بالکل جس کے منہ سے اس کا پسینہ لگ رہا ہے وہ اس میں تیر رہا ہے، یہ حال ہے۔ اور پھر یہ تو ظاہری اعتبار سے جسم کی پریشانی ہوئی، انجام کیا ہوگا چونکہ پتہ نہیں ہے، حساب کتاب ابھی شروع ہوا نہیں ہے تو اس کی پریشانی الگ ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک جن سات لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دیں گے اور اس تپش سے، اس گرمی سے بچائیں گے اور ان کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان کا ذکر اس حدیث شریف میں آیا ہے۔ سب سے پہلے جس کا ذکر آیا وہ ہے الامام العادل، کہ انصاف پرور بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ، جس کو چند لوگوں کا، رعایا کا، قوم کا، لوگوں کا سرپرست بنایا گیا، والی بنایا گیا، حاکم بنایا گیا، گورنر بنایا گیا، وزیر بنایا گیا، بادشاہ بنایا گیا، اور اس نے اپنے اس عہدے کو صحیح معنی میں، اس کام کے لیے یہ عہدہ ہے، اس کام کے لیے اس نے اس عہدے کو استعمال کیا، ایسا انصاف پرور بادشاہ اس دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا شخص میں جو آیا ہے وہ ہے رجل وشاب نشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جس نے، جس کی پرورش، جس کی اٹھان اور جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ آج کی اس نشست کے اندر یہ نوجوانوں کی عبادت، نوجوانی کی عبادت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ عبادت کا جو مفہوم ہے اس کا ذکر کرتے ہی سب سے پہلے ہمارے ذہن میں نام آتا ہے نمازوں کا، اس کے بعد نام آتا ہے، ذہن میں خیال آتا ہے تسبیح کا، اذکار کا، تلاوت قرآن مجید کا، مسجد میں زیادہ سے زیادہ بیٹھے رہنے کا، عبادت کے تصور اور خیال کے ساتھ ہمارے ذہن میں یہ باتیں فوراً آتی۔ لیکن کیا شریعت میں بھی عبادت کا مفہوم یہی ہے کہ جو یہ کام کرنے والا، زیادہ کام کرنے والا ہے وہی زیادہ عبادت گزار ہے، جو تہجد پڑھنے والا ہے وہ زیادہ عبادت گزار ہے، جو نوافل زیادہ پڑھنے والا ہے وہ زیادہ عبادت گزار ہے، جو ہر وقت تسبیح لیے دانے گن رہا ہے وہ زیادہ عبادت گزار ہے؟ کیا شریعت میں بھی عبادت کرنے کا، عبادت گزار ہونے کا مفہوم یہی ہے؟ شریعت نے اس کا، عبادت گزار ہونے کا مفہوم یہ نہیں بتایا۔ پھر کیا بتایا؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ عبادت گزار بننے کا طریقہ جاننا چاہتے ہو، اور انہوں نے پھر فرمائی ظاہر کی کہ ہاں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے بچو سب سے بڑے عبادت گزار بنو۔ فرائض انجام دینا، نمازیں ادا کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو حج کرنا، یہ عبادات کی لائن کے فرائض ہوئے۔ معاشرت کے لائن کے جو فرائض ہیں ان کو انجام دینا، معاملات کے لائن کی جو ضروریات ہیں ان کو انجام دینا، اخلاقی جو فرائض ہم پہ عائد ہوتے ہیں ان کو انجام دینا، یہ فرائض ادا کر لینے کے بعد جو ہر قسم کے گناہوں اور حرام کاموں سے خود کو بچاتا ہے، مثلاً بدعقیدگی ہے، برے عقائد ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ایسے ہی بزرگان دین کے بارے میں، اسلامی تاریخ کے حوالے سے، اسلامیات، اسلامی علوم اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جو غلط عقائد ہمارے اندر اگر آ گئے ہیں تو ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور پوری زندگی ان سے پاک گزارنا، یہ ہے اتق المحارم۔ अकाइद से निकलने के बाद इबादत में जो हराम चीज़ें हैं, जो काम हम नहीं कर सकते, जैसे हम नमाज ही पढ़ना चाहते हैं लेकिन जब सूरज निकल रहा है तब पढ़ रहे हैं, जब सूरज बिल्कुल सर पे है तब पढ़ रहे हैं, जब सूरज डूब रहा है तब पढ़ रहे हैं, गुनाह का काम है। बज़ाहिर सूरत उसकी इबादत वाली है, नमाज वाली है, अल्लाह के जिक्र वाली है, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह का जिक्र नहीं है, वो अल्लाह की नाफरमानी, वो अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं, अल्लाह की मासीयत है। तो ऐसे इबादत के अपनी इबादतों को भी गुनाह से बचाना, कोई रोज़ा रखना चाहता है, ईद के दिन रखना चाहता है, ईद के दिन रोज़ा रखना इबादत का काम नहीं है, अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं है, नाफरमानी। ईद के दिन अल्लाह की तरफ से मेहमानी के दिन है, मेज़बानी के दिन है, उस दिन हम अल्लाह के मेहमान हैं, तो उस दिन हम लोगों को उसमें अल्लाह को रोज़ा रख कर नहीं दिखाना है कि हम यकुम शव्वाल को भी रोज़ा रखे जा रहे हैं, 10 ज़िलहज को भी रोज़ा रखे जा रहे हैं, इसकी इजाज़त ही नहीं है। तो हम अपनी इबादतों को भी हराम से बचाना, मुआशरत को हराम से बचाना, रहन सहन में जो चीज़ें हम शरीय एतबार से, इस्लामी एतबार से नहीं कर सकते, उन चीज़ों से अपने आप को बचाना, हमारा पड़ोसियों के साथ में, अपने जान पहचान के लोगों के साथ में, मस्जिद में जिन लोगों से मुलाकात होती है उनके साथ में, हमारे जॉब पे जिनसे मुलाकात होती है उनके साथ में, रोज़ाना आने जाने में जिन लोगों से मुलाकात होती है उनके साथ में, सफ़र करते हुए जिन लोगों का साथ पड़ता है उनके साथ, उनके जो हुकूक बनते हैं वो सारे हुकूक फ़राइज़ में ही आते हैं, हक़ फ़र्ज़ होता है, तो जो हुकूक फ़र्ज़ बनते हैं उन सब की अदायगी ये ज़रूरी हो जाती है, और उनको अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हराम में पढ़ने वाले समझे जाए। तो नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, नमाज छोड़ना हराम, तो फ़र्ज़ की अदायगी ज़रूरी हो गई, जिस चीज़ की अदायगी ज़रूरी होती है उस चीज़ को अगर आप छोड़ेंगे तो हराम का इर्तिकाब करने वाले, हराम में पड़ने वाले समझे जाएंगे। खाने पीने की लाइन से और कमाने धमाने की लाइन से, कमाना भी हलाल है, खाना भी हलाल है, माल हासिल करना भी हलाल जगह से और हलाल हलाल तरीके से ज़रूरी है, और उस हलाल तरीके से कमाए हुए माल को फिर हलाल जगह में हलाल तरीके से सर्व करना ज़रूरी है, हराम जगह में भी उसको नहीं डाल सकते और इसराफ के साथ में भी उसको खर्च करने की इजाज़त नहीं है। माशरत के अंदर बीवी बच्चों के हकूक हैं, मस्जिद में आकर के बड़े अल्लाह वाले बने और वहाँ जाकर बीवी बच्चों के हकूक की कोई परवाही नहीं है, माँ बाप के हकूक की कोई परवाही नहीं है, औलाद के हकूक की कोई परवाही नहीं है, दूसरे जो रिश्तेदारों के हकूक बनते हैं उनकी कोई परवाही नहीं है, तो ये आदमी इबादत गुजार शरीयत की नज़र में हरगिज़ नहीं है, क्योंकि इबादत का मफहूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हराम कामों से बचना। हराम का ताल्लुक अकाइद से भी होगा, हराम का ताल्लुक इबादत से भी होगा, हराम का ताल्लुक हमारे रहन सहन में जिनसे हमारे हुकूक वाबस्ता है उनसे भी होगा, और अपनी ज़ात में पहनने ओढ़ने के लिहाज से, चलने फिरने के लिहाज से, सूरत शक्ल बाल लिबास वगैरह के एतबार से हम क्या कर सकते हैं, कैसा लिबास पहन सकते हैं, कैसे बाल रख सकते हैं और कैसे नहीं रख सकते हैं, ये सारी ज़रूरी चीज़ें भी हम पर आयद होती हैं, और इनके अंदर बेएहतियाती करने वाले भी हराम में पड़ने वाले हैं और वो भी इबादत गुजार नहीं समझे जा सकते, वो अपने आप को बड़े तहज्जुद गुजार बने, बड़े नवाफिल के अहतमाम करने वाले बने, बड़े कुरान करीम की कसरत से तिलावत करने वाले बने, लेकिन अगर हदीस से और अल्लाह के रसूल से उसका मतलब पूछे कि एक बंदा तहज्जुद भी पढ़े जा रहा है, फराइज भी तर्क नहीं करता, मस्जिदों में भी पाबंदी से हाजिर होता, नवाफिल का भी पाबंद है और बड़ी कसरत से अजकार में लगा रहता है, लेकिन ज़ाहिरी एतबार से मुआशरत में उसके दीन नहीं है, कोई इबादत गुजार है या नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैंने तो बताया था कि इत्तकुल महारिम, कि अगर इबादत गुजार बनना है तो हराम से बचना ज़रूरी है, और हराम का ताल्लुक माशरत से भी है, तो माशरत ही हराम कामों से जब तक नहीं बचेंगे उस वक्त तक इबादत गुजार होने का सवाल नहीं होता। मामलात के अंदर भी, लेन देन के जितने काम हमारे खरीदने बेचने के हैं, हमारी जॉब करने के हैं, हमारे बॉस बनने के हैं, हमारे एम्प्लॉई बनने के हैं, ये सारी चीज़ों के अंदर जो हुकूक इस्लामी हमारे आयद होते हैं उनको जब तक हम अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक हम हराम से बचने वाले नहीं होंगे, और आज के ज़माने की करामत यही है कि हम हराम से बच जाए, ये इस ज़माने में तो करामत यही होगी, अगले ज़मानों के अंदर भी यही समझी गई है। पहले ज़मानों के अंदर भी आता है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह के पास, जो सैयदुत ताइफा बहुत बड़े बुजुर्ग समझे जाते हैं, उनके उनके पास एक मुरीद आया, 10 साल उनकी खिदमत में रहा, उसके बाद उसने कहा कि मुझे आपसे मायूसी हो गई, मैं आपके पास से जाना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि 10 साल रहा एक करामत नहीं देखी आपकी, वो समझा हुआ था विलायत बुजुर्गी और अल्लाह से ताल्लुक का मदार इसी पर है कि उसे करामतें साधे हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा करामत नहीं रही, तो कहा कि हाँ कोई करामत नहीं रही, 10 साल हो गए खिदमत करते हुए आपके साथ रहते हुए। उन्होंने कहा कि इस 10 साल के अरसे में कोई काम भी ऐसा देखा जो मैंने शरीयत के हुक्म के खिलाफ किया? तो उसने कहा कि नहीं। तो बोले इससे बड़ी करामत क्या चाहिए, इससे बड़ी करामत क्या चाहिए? तो शरीयत के अहकाम की पूरे तौर पर पाबंदी करना ही सबसे बड़ी करामत है, सबसे बड़ा एजाज है। करामत का मफहूम होता है, लफ्जी मफहूम होता है एजाज, और करामत का एक मफहूम वो होता है कि गैर मामूली चीज़ें सादिर होना, जिससे गैर मामूली चीज़ें सादिर हो वो अल्लाह का फरमा बरदार बंदा हो, तो वो गैर मामूली चीज़ों का सुदूर उसको इज्जत दिलाता है, इस वास्ते करामत है। अगर
हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास उसी दौर की एक खातून जो खवातीन इस्लाम में काफ़ी मशहूर है, हजरत राबिया बसरिया रहिमहुल्लाह, वो आई मसला पूछने के लिए। उस वक्त बुजुर्गान दीन अजय अपने अपने हालात में होते हैं, क्योंकि लोगों में रहते हुए, उनकी गुनाह आलूद जिंदगियों में रहते हुए, उस माशरे में रहते हुए, वहाँ का असर उनके दिलों पर पड़ता है। तो फिर वो तन्हाइयाँ ढूंढते हैं, जंगलात ढूंढते हैं, गार ढूंढते हैं, जहाँ आबादी ना हो, जहाँ इन चीज़ों से दूरी हो। तो हजरत हसन बसरी दरिया के किनारे गए हुए थे और दरिया पर ही मुसल्ला बिछाकर, पानी पर ही मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत राबिया पहुंची तो उनको वहां के हसन बसरी इस हाल में मिले। उन्होंने कहा कि ये तो अपनी करामत का इजहार हो गया। उन्होंने हवा पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। हजरत हसन ने जब ये देखा, हसन बसरी ने, कि ये हवा पर मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ रही है, तो समझ गए कि ये मेरे ऊपर तंज है। तो फिर उसके बाद वो पानी से उतर करके आ गए। उसके बाद फिर राबिया ने, फिर उनको जो मसला पूछने आई थी, उन्होंने उनको बताया कि पानी पर तो तिनका भी तैरता है और हवा पर तो मक्खी भी उड़ती है। कमाल ये नहीं है मक्खी की नकल उतारना या तिनके की नकल उतारना, कमाल ये है कि हम अल्लाह की ख्वाहिशात को, करामत ये है कि हम अल्लाह अपनी अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्मों के आगे कितना दबाते हैं। अल्लाह के हुक्मों के लिए हम अपनी ख्वाहिशों को कितना छोड़ते हैं, हम अपनी चाहतों को कितना छोड़ते हैं, ये कमाल है। तो आज के जमाने की करामत भी यही है कि अपने आप को गुनाहों से बचाना सबसे बड़ी करामत। कैसे गुनाहों से बचाना? हर लाइन के गुनाहों से बचाना। सबसे पहली बात हम अपने जहनों में ये बिठा लेना और अपने जहन में ये उतार लेना कि हमारे इस्लाम का ताल्लुक सिर्फ कलिमे से नहीं है, सिर्फ कलिमे से नहीं है। कलिमे के साथ साथ बहुत सारी चीजें हमसे चाही जाती हैं, उनका करना हम पर जरूरी है, मजहबी आदमी होने के हवाले से। बहुत सा हम हजारों दफा इस बात को सुन चुके होते हैं, लेकिन हमारा दिल इसको कबूल ही नहीं करता। वजह उसकी ये है, यानी ये कैसे कहा जा सकता है कि हमारा दिल इसको कबूल नहीं करता? क्योंकि जिसका दिल कबूल करता है फिर वो उस पर अमल करता है। मुझे पता हो कि इस शीशी के अंदर जहर रखा हुआ है तो मैं कभी उसके करीब नहीं जाऊंगा, कभी उसको मुंह में उसको पीने की कोशिश नहीं करूंगा। तो जब गुनाह जहर है रूह के लिए, जब गुनाह आखिरत के एतबार से मुजर है, दुनिया में भी उसके नुकसान उठाने पड़ते हैं, उन चीजों के बारे में हमें पता है और हम नहीं कर सकते, तो फिर भी हम उनको करते हैं। पता क्या चला कि हम उस गुनाह को गुनाह नहीं समझते, हम उस गुनाह के असर, जहर का असर यकीन नहीं करते, हम उस गुनाह के आखिरत में और दुनिया में नुकसानदह होने को सही तौर से मानते नहीं, हमारा दिल उसको मानता नहीं। अगर मानते होते तो हमने जैसे कलमा पढ़ा है फिर हम उस हुक्म के भी पाबंद होते। जाहिरी चीजों में जितनी जितनी चीजें हमारे ऊपर आयद होती हैं, हमारे सर के बाल, हमारे दाढ़ी के बाल, हमारे आजाद बदन के दूसरे बाल, शरीयत ने जिन हुदूद में उनको रखने और छोड़ने और साफ करने और साफ नहीं करने, काटने नहीं काटने का हुक्म दिया, जिस तरीके से उनकी सफाई का हुक्म दिया, उसके हम पाबंद हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अनु की आदत थी कि वो रात को तिलावत कुरान बुलंद आवाज से करते थे, क्योंकि उनकी आवाज ही बुलंद थी, तो तिलावत करते थे तो आवाज वैसे ही बुलंद अदा होती थी। अबू बकर सिद्दीक नरम दिल थे, उनकी आवाज में नरमी थी, जब भी वो तिलावत करते थे नमाज के अंदर रात के वक्त, तो उनकी आवाज में पस्ती होती थी। हुजूर का गुजर रात में गश्त हुआ, देखा कि हजरत उमर बड़ी आवाज से तिलावत कर रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक बहुत नरम आवाज, हल्की आवाज से तिलावत कर रहे हैं। तो दूसरे दिन दोनों को हुक्म दिया कि भाई तुम थोड़ा, उमर तुम थोड़ी कम आवाज से तिलावत किया करो, हजरत अबू बकर से फरमाया तुम थोड़ी आवाज बुलंद कर लिया करो। बुजुर्गों ने फरमाया यहाँ आवाज बुलंद करने और आहिस्ता करने का किस्सा नहीं है, यहाँ किस्सा है अपनी चाहत को छुड़ाने का। उनकी चाहत थी बुलंद आवाज से पढ़ने की, उनको बोला गया नहीं आहिस्ता करो। उनकी चाहत, अबू बकर की चाहत थी आहिस्ता पढ़ने की, उनको बोला गया अपनी चाहत छोड़ो और अल्लाह के मेरे हुक्म के खातिर, मेरी तालीम के खातिर तुम आवाज थोड़ी सी बुलंद किया करो। तो यहाँ हर चीज में, सर के बालों में, दाढ़ी के बालों में, लिबास में, अब हमें पता नहीं क्या हो जाता है, फैशन के नाम पे लोग घुटने तक नंगे कर लेते हैं, सारा बदन नंगा करते हैं, लेकिन सुन्नत के नाम पे, मजहब के नाम पे, इस्लाम के नाम पे हमसे टखने नंगे नहीं होते। टखनों से ऊपर हम हमेशा हर हाल में नहीं रख सकते। समझ में नहीं आता कि इसमें मजबूरी क्या है हमारी। हालांकि आजकल तो किसी किस्म की किसी को कोई पाबंदी नहीं है, कौन किसी को रोकता है कि तुमने टखने क्यों ढांके हुए? जो घुटने नहीं ढांकता उससे नहीं पूछा जाता, तो जो टखने नहीं ढांकेगा उससे कहाँ पूछा जाएगा? आते हैं नमाज भी उसी हाल में पढ़ते हैं, तो हमारी बदतौफीकी की इंतहा हो गई, नमाज के वक्त तक हमको इसका ख्याल नहीं रहा। अच्छा, कुछ बातौफीक वो होते हैं जिनको सिर्फ नमाज के हद तक तौफीक हो जाती है, फिर नमाज के बाद बाकायदा वो नीचे करते हैं उसको, जाते हुए जूते पहन रहे हैं और उन जो टखनों से ऊपर हमारे पहुंचा आ गया है और पायजामा या पैंट आ गया है, हम समझ रहे हैं कि हमें उससे गुनाह होने वाला है, इसलिए हमको नीचे करने की जरूरत। हुजूर ने ये तो नहीं कहा ना कि नीचे अगर टखनों से जाएंगे तो तुमको गुनाह ऊपर होगा तो गुनाह होगा और नीचे जाएंगे तो तुम गुनाह से बच जाओगे। उन्होंने तो साफ कहा मासफल मिनल काबैन मिनल इजार फिन्ना, अगर टखनों का हिस्सा छुप गया ऊपर से पहनने वाले कपड़ों से तो वो जहन्नम में डाला डाला जाएगा। बुजुर्गों ने फरमाया कि टखना तो सिर्फ नहीं जाएगा ना, टखना आदमी को लेके जाएगा। तो समझने की बात है, हम समझते हैं मामूली चीज है, इसकी अहमियत देने की चीज नहीं। अहमियत देने की चीज नहीं होती तो हुजूर बोलते क्यों? अगर ये इतनी अहमियत की चीज होती ही नहीं तो हुजूर ये क्यों फरमाते कि ये गुनाह ये जहन्नम में ले जाने वाली चीज है? चेहरे साफ किए जा रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक चेहरे नहीं है, इसको कोई अहमियत नहीं देता। फुस्साक और फुज्जार का फैशन दाढ़ी रखने का हो गया, हमारे नबी का फैशन भी, हमारे नबी की सुन्नत भी दाढ़ी रखने की है। फुस्साक और फुज्जार के फैशन को फॉलो करते हुए शर्म नहीं आती, हुजूर की सुन्नत को फॉलो करते हुए हमें शर्म आती है। लिबास पहनने के अंदर भी यही हाल है कि जॉब के अंदर भी हम अगर कोशिश हम गुंजाइश हो फिर भी हम गैरों के लिबास पहनते हैं, और जॉब के बाहर तो फिर मनमानी यही जाते हैं। तो हम हर चीज के अंदर इस्लाम के पाबंद हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के पाबंद हैं, और हर चीज के हराम से बचने पर हम इबादत गुजार कहलाए जा सकते हैं, हम अब्द बन सकते हैं। अल्लाह पाक ने हम सबों को अब्द बनाया, हम क्या हैं? इबादुल्लाह हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। और बंदे की खासियत, बंदा बना है किससे? मिट्टी से बना है। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, मिट्टी की खसूसियत है ताबे बन के चलना, मिट्टी की खसूसियत है ताबे बन के चलना। अब कोई कितना ही बड़ा हो इल्म के एतबार से, मालो दौलत के एतबार से, जाहो अशमत के एतबार से, हुकूमत के एतबार से, ओहदों के एतबार से, कोई कितना ही बड़ा हो वो होगा गुलाम ही, क्योंकि हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, मिट्टी की खासियत में गुलामी है। तो कोई अपनी खासियत से कैसे निकल सकता है? पानी की खासियत में बहाव है तो पानी बहे बगैर कैसे रह सकता है? लाए के जम जाए, लेकिन वो जमना उसकी आरजी सिफत है, वो है आज है कल नहीं होगी, अब है थोड़ी देर बाद नहीं होगी, ये वाला हाल है। तो इंसान के साथ भी गुलाम, इंसान की खासियत भी ये है और कि वो बंदे हैं अल्लाह के, मिट्टी से पैदा किए हुए हैं, तो गुलामी उनकी सरिश्त में, उनके खमीर में, उनकी फितरत में दाखिल है। अगर वो अल्लाह के बंदे ताबे बन के चलेंगे तो दूसरों की गुलामियों से आज़ाद होंगे, अल्लाह के ताबे बन के नहीं चलेंगे तो फिर अपनी गुलामी में आज़ाद, अपने अपने ही नफ्स के गुलाम बन जाएंगे वो, और अल्लाह से आज़ाद होंगे। समझिए रहे हैं कि हम आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं। जितने मजहब के मुखालिफ हैं, जितने मजहब बेजार हैं, जिनको मजहब से कोई लगाव नहीं है, जो मजहब के साथ के मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारना नहीं चाहते, वो समझते हैं हम आज़ाद हैं। आज़ाद वो नहीं है, वो हमसे बढ़कर, मजहबी लोगों से बढ़कर गुलाम है, अपने आप के, अपने नफ्सों के, अपने थ्योरियों के, अपने नजरियों के, और अपने तरीक़ेकार जिंदगी के बनाए हुए उसूलों और कानूनों के। उनका बनाया हुआ कानून तो फॉलो करने के काबिल है, अल्लाह का बनाया हुआ कानून फॉलो करने के काबिल नहीं। उनके बनाए हुए फैशन तो फॉलो करने के काबिल है, रसूलुल्लाह वसल्लम की बताई हुई सुन्नत है वो फॉलो करने के काबिल नहीं। एक तरफ एक बड़ी इंसान, इंसानियत की सबसे अजीम तरीन हस्ती है, दूसरी तरफ ये इंसानों, ये मामूली इंसान है जिनके अखलाक और कैरेक्टर और किरदार कोई भरोसा नहीं, बल्कि दुनिया उन पर थूकती है, ऐसे लोगों का फैशन एक तरफ है, दूसरी तरफ ऐसी अंबिया जैसी बरगजीदा और पाक हस्तियां हैं, एक तरफ उनकी सुन्नतें हैं, एक तरफ इनका फैशन है। तो हमारे इख्तियार में है कि हम किसको फॉलो करते हैं। जब तक हम इन हराम चीज़ों को मुआशरत की नहीं छोड़ेंगे, मामलात की हराम चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, इबादात की लाइन से हराम को निकालेंगे नहीं, बदअकीदगियों से अपने आप को पाक करेंगे नहीं, उस वक़्त तक हम आबद अन्नास अल्लाह के इबादत गुजार बंदे बनने के काबिल ही नहीं होते। जाहिरी गुनाह होते हैं उनसे भी बचना है, आंख का गुनाह है, कान का गुनाह है, जबान का गुनाह है, मुंह का गुनाह है, पेट का गुनाह है, शर्मगाह का गुनाह है, इन सब से बचना बहुत जरूरी है। इसके लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, गुनाह से बचने के लिए सबसे पहले तो इल्म हो कि हम फिक्र करें कि ये हर गुनाह से हमको बचना है, हर लाइन के गुनाह से हमको बचना है। और गुनाह से बचने के वास्ते दो काम जरूरी होते हैं, एक हिम्मत और एक दुआ। कुरान करीम में बेशुमार वाकयात अल्लाह ने बयान किए हैं, बेशुमार किस्से अल्लाह पाक ने अहसनुल कसस के नाम से बयान किए, इबरत के वास्ते बयान किए, नसीहत के वास्ते बयान किए, और फरमाया कि तुम नसीहत हासिल करो, इसीलिए मैं इसको जिक्र करूँ। कुरान करीम के बारे में आया इन्ना हाजी ही तज़किरा, ये नसीहत नामा है, यानी मेरी, मैंने मेरा तरीक़ेकार और मेरी सुन्नत और मेरा अमल कैसा रहा अगली उम्मतों के साथ में मैंने तुम्हारे सामने पेश किया, अब तुम उनकी तरह जिंदगी गुजार कर खुद को बर्बाद करते हो या फिर मेरी मान करके अपनी जिंदगी और दुनिया और आखिरत आबाद करते हो, ये अल्लाह पाक देखना चाहते हैं। इसके लिए हिम्मत करनी पड़ती है। जितने वाकयात कामयाबियों के मिलते हैं उन्होंने अपने नफ्सों के खिलाफ, अपने आप के खिलाफ, अपनी चाहतों के खिलाफ, अपनी ख्वाहिशों के खिलाफ हिम्मत की है, फिर अल्लाह पाक से उन्होंने दुआएं की, अल्लाह का फजल मांगा, अल्लाह ने उनकी जिंदगी आसान कर दी। गुनाहों से बचना इब्तदा में बड़ा मुश्किल होता है, हराम नजर आ रहा है, हर जगह नजर आ रहा है, अब हम उससे बचना चाहते हैं, अपने आप को, नजरों को बचाना चाहते हैं हराम से, बड़ी मुश्किल हो रही। लेकिन जैसे ही हम हिम्मत करते हैं फिर अल्लाह पाक उसको आसान कर देते हैं, अल्लाह का वादा है
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, کہ تم کوششیں کرو ہم ان کوششوں کو آسان کریں گے. لیکن کوششیں کرنا یہ اس کی ہمت کرنا کوشش کرنے کی, یہ ہمارا اپنا کام ہے. اسی کی بنیاد پر پھر ہمارے لیے جزا اور سزا کا نظام مرتب ہے. ہم یہ کوشش جس کے ہم مکلف پابند بنائے گئے ہیں کرتے ہیں یا نہیں, اگر کرتے ہیں تو اللہ پاک دنیا کے اندر بھی ان کوششوں میں کامیابیاں اور اس کے اثرات اور اس کے ثمرات مرتب فرماتے ہیں. ان کوششوں میں اگر ہم ناکام رہتے ہیں, کوشش ہی نہیں کرتے کہ مشکل ہو رہی ہے, تو پھر اللہ پاک دنیا بھی تباہ و برباد کرتے ہیں, آخرت بھی ایسے لوگوں کی نقصان ہی میں رہتی ہے. حق تعالیٰ علم صحیح عمل صالح کی توفیق فرمائے.